ओम शांति, ओम शांति। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है हमारे प्यारे और दिलों के सहारे। तो आज भी प्यारे प्यारे बाबा ने बच्चों से बहुत मीठी मीठी और राजयुक्त और बहुत गहरी बातें सुनाई हैं। और बाबा ने कहा है कि बाप आकर के ऐसी सूक्ष्म बातें सुनाते हैं तो बच्चों को क्या करना है, उस पे विचार सर मंथन करना है, विचार करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चों को हबश अथवा लालच नहीं होनी चाहिए। पेट कितना खाता है, बहुत कम खाता है, गरीब है उनका तो थोड़े में भी चल जाता है, अमीर को लालच रहती है ये भी खाएं, ये भी इकट्ठा करें, वो भी इकट्ठा करें। तो बाबा ने कहा बच्चों को इस तरह से लालच नहीं रखनी है। बाबा ने ये भी कहा कि सतयुग में प्रजा तो बहुत अच्छी तरह से रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ नहीं करें। तो बाबा ने एक उदाहरण दिया, जैसे यहाँ के भील लोग हैं, रहते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, आराम से रहते हैं, लेकिन कहलाएंगे तो भील ना। तो बाबा ये चाहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करके सतयुग में भी ऊंच पद पाए। अभी हम सुनते हैं आज प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 20 अगस्त 2025। मुरली का मुख्य हरि। मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। आज का प्रश्न है बाप ने कौन से सूक्ष्म बातें बताई हैं जो बहुत समझने की हैं? बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें बताई हैं जो बहुत समझने की हैं? उत्तर है सतयुग है अमर लोक, वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं। यहाँ कलयुग में मौत बोलेंगे, मृत्यु बोलेंगे, बाबा कहते हैं वहां पर मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना है ब्रह्मा की रचना, शिव बाबा की है बेहद की रचना, और ब्रह्मा की रचना इस समय तो सिर्फ ब्राह्मण हो, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। बाबा कहते त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो बाप ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच्य। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते, बाबा कहते वास्तव में होना चाहिए, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान वाच्य नहीं कहते हैं। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच्य कह सकते हो, वो लोग तो शिव शंकर को एक कर देते हैं, शिव शंकर को मिला देते हैं, ये तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानों वाच्य। तो बाबा करेक्शन कर रहे हैं, मनुष्य तो कह देते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है, ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पार्ट है, ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट, बाबा कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु का बड़ा पार्ट है, 84 जन्मों का, विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का भी अर्थ समझाया है, पार्ट है इन तीन का। ब्रह्मा का नाम गाया हुआ है आदिदेव एरम, प्रजापिता का मंदिर भी है, ये है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम जन्म 84वां जन्म, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा। सिद्ध तो करना है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे, ब्रह्मा को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, हम ये दोनों बच्चे हैं शिव के, कौन ब्रह्मा और विष्णु, ये शिव के दोनों बच्चे हैं, वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम नहीं आता है, विष्णु को ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव की रचना है, बाबा ब्रह्मा जो है वो बाबा की रचना है, विष्णु को ऐसा नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। दुनिया में भी कहते हैं विष्णु द्वारा पालना कराते, स्थापना किससे कराते हैं, ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कह सकते। मैं लक्ष्मी नारायण को भी बहुत बच्चे हो सकते हैं, बाबा ने कई बार बताया है कि मुरली के अंदर लक्ष्मी नारायण को भी एक या दो होगा। ये है बुद्धि के लिए भोजन, आप ही भोजन बनाना चाहिए। बाबा किस लिए कहते थे, बाबा कहते थे बच्चों को विचार सर मंथन करना है, तो एक बार की बात है बाबा अपने कमरे में बहुत पावरफुल योग में बैठे थे, तो दादी जानकी वहां गई तो चारों तरफ लाइट ही लाइट थी, और दादी जानकी जाकर के बैठ गई और दादी भी बाबा से दृष्टि ले रही थी, बाबा मुस्कुरा रहे थे, और बाबा ने कहा बच्ची देखो बाबा क्या कर रहे थे, तो दादी तो शांति से खड़ी थी, बाबा ने कहा आज बाबा जो है बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बनाए, मीन्स गरम गरम हलवा मीन्स आज बच्चों को गहरी गहरी बातें सुनानी है। तो फिर इस तरह से बाबा भी बच्चों को कहते हैं बच्चों को क्या करना है, विचार सागर मंथन करके अपना भोजन खुद ही तैयार करना है, आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का, और सबसे कम पार्ट कहेंगे ब्रह्मा का, सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु को दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा को। सबने विराट रूप देखा है कि नहीं, बहने बट्टी की बहने सबने विराट रूप का चित्र तो देखा होगा, सेंटर पर भी देखा होगा, अगर किसी ने ना भी देखा तो म्यूजियम में विराट रूप का चित्र भी है, वहां भी देख सकते हैं। विराट रूप का विष्णु को दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा का, विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम रखते हैं, ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं, वास्तव में अलंकार तुम्हारे हैं, कहाँ है अलंकार आपके, बाबा कहते हैं आपके अलंकार, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उस अलंकार से इधर घुमाया उधर घुमाया, तो फिर बाबा उन बच्चों को नहीं देते हैं, तो बाबा कहते हैं वास्तव में अलंकार तो तुम्हारे हैं। ये भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई भी मनुष्य समझा ना सके, बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानों वाच्य राइट हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। अब त्रिमूर्ति में बाबा ने क्या बताया, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिएशन कहती है परंतु रचना तो थोड़ा है इस समय का, वो क्रिएशन है, लेकिन रचना कौन है? ब्रह्मा बाबा है, जो फिर बाद में भिन्न भिन्न नाम रूप लेती हैं। मुख्य पाठ तो उनका ही है, ब्रह्मा का पाठ बहुत थोड़ा है। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को क्या पाठ थोड़ा है, शालिग्राम किसको कहेंगे? शिव बाबा के। तो बाबा कहते हैं विष्णु का कितना समय राज्य है, सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा, उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण और ब्राह्मणिया कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की रचना है कि नहीं? बाबा की तो उतनी ब्रह्मा की रचना नहीं है, ब्रह्मा को तो वही जो ब्राह्मण बनते वो रचना है। तो बाबा कहते हैं जितनी शिव की रचना है उतनी क्या ब्रह्मा की रचना है? नहीं, शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना तो कौन है? बाबा कहते सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो, ब्रह्मा की रचना सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो, हद में आ गए हो ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा बताते हैं क्या करते हैं, बाबा ब्रह्मा द्वारा सबका कल्याण करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे, निर्वाण वासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते, जिनका पाठ है सत्यों में वो तो जाएंगे, और शांति धाम में निर्वाण धाम में तो सबको जाना है, वहां से क्रॉस करना है। तो बाबा कहते हैं और कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे, निर्वाण वासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंचती ऊंच सर्विस कौन करते हैं? अब बताइए सबसे ऊंचते ऊंच सर्विस कौन करते हैं? बाबा के शिव बाबा के। क्यों? सबको पावन बना के साथ ले जाते हैं, सबसे ऊंच से ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है, सभी आत्माओं को ले जाते हैं, सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है, सबका हिसाब किताब चुक तो कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो किस लिए? पावन बनने के लिए। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब क्या कर रहे हैं? दुनिया वाले क्या कर रहे हैं और बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा कहते तुम बच्चे मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, और दूसरे सब जो हैं कयामत का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। बच्चे भी जाएंगे मुक्ति धाम में, लेकिन फिर जल्दी से वापस आ जाएंगे। फिर सृष्टि का चक्कर तो फिरना ही है, तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्री मत पर सेवा करते हो, ब्राह्मणों को बाबा ने ही डायरेक्शन दिए हैं क्या क्या सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है। तो बच्चे तो बाबा की श्री मत पर ही सेवा करते हैं, और दुनिया वाले तो कई प्रकार के अपने संगठन बना के क्या क्या करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे श्री मत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो कि मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो, दोनों चाबी हाथ में। कौन सी दोनों चाबी? एक मुक्ति की और दूसरी जीवन मुक्ति की। बच्चों के पास, ब्राह्मण बच्चों के पास दो चाबी है, और बाहर वालों के पास एक चाबी है। तो हमारे पास मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाबी। दोनों चाबी तुम बच्चों के हाथ में है, ये भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में और कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कौन सा धंधा है? लोगों को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, सेवा करना। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करता है तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। जो जिसका बिजनेस होगा उसके बारे में उसका विचार चलता रहता है, ये करना वो करना। तो बाबा कहते हैं कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का धंधा है, तो तुमको सारा दिन ये धंधा करना चाहिए। कौन सा? रचयिता और रचना। हमें हम उनकी रचना है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये विचार सर मंथन करना है। तो बाबा कहते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। बाबा कहते हैं और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। अब हर जगह देखते हैं, चाहे भारत के अंदर विदेशों के अंदर भिन्न भिन्न धर्मों के हैं, लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो फिर वापस में अपने धर्म में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म हैं जो बदल नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने कहा ना उनका पार की उनके धर्म में तो वही सुनेंगे। कई बार विदेशों में ऐसा होता है कोई कोई अलग धर्म वाले आते हैं ज्ञान को सुनेंगे ना, उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, योग अच्छा लगता है, योग में बैठते तो उस समय समझ आते हैं कि इनका अपने धर्म में ऊंच पद पाने का है। तो वो इस धर्म में नहीं आएंगे। आदि सनातन देवी देवता को वो पहचानते नहीं है, लेकिन अपने धर्म में ऊंच पद पा सकते हैं। ऐसे बहुत धर्म के जो बदल नहीं सकते, जैसे इंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं, रूप तो बदलता नहीं, सिर्फ ऐसे बदलेंगे। जब क्रिश्चियनिटी यहाँ आई तो उन्होंने क्या किया, भारत के ऐसे ऐसे कॉर्नर में जहाँ गरीब प्रजा थी वहां जाकर के उनको क्रिश्चियन कन्वर्ट किया, लेकिन रूप तो वही रहेगा ना, चाहे उनको बाकी बातों में कन्वर्ट किया लेकिन रूप तो नहीं बदली कर सकते ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे सिर्फ बदल देंगे, ऐसे नहीं कि फीचर्स भी बदल जाते हैं। सिर्फ धर्म को मान लेते हैं, कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है ना, एक भी ऐसा नहीं है जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हम बच्चे क्या कहेंगे, बाबा के बच्चे क्या कहेंगे बोलो, हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के। कोई भी आपको पूछे तो क्या बताएं, ब्राह्मण है पुरुषार्थ करें, लेकिन हमारा असली धर्म क्या है, आदि सनातन देवी देवता धर्म के। नहीं तो कईयों को होता है ना इनका धर्म अलग है, हमारा है ही नहीं, हमारा धर्म ही आदि सनातन देवी देवता है, हम ओरिजिनल उसी धर्म के हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा एक भी नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं, एक श्री छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है, उनको मृत्यु लोक कहा जाता है और वह है ही अमर लोक। इस समय है मृत्यु लोक और सतयुग है, वह है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलता है, ये बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की, कितनी गहरी बातें हैं। यहाँ पर तो समझते नहीं, कोई मरेगा रोएंगे चिल्लाएंगे क्यों चला गया, इसको अभी नहीं जाना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों किया, इसको नहीं पता नहीं क्या क्या करते हैं। वहां तो उनको पता होता है कि अब इनका टाइम आ गया जाएंगे। तो बाबा कहती है ये बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। मुठ्ठा ठोक नहीं है, मुठ्ठा कहते थे पहले जमाने के अंदर, जो काफी सारा दे रहे थे इकट्ठा। पहले जमाने में जो बिजनेस करते थे ना, तो कट्ठा का कट्ठा लॉट का लॉट ही खरीदते थे, उसको कहते थे मुट्ठा। और बाकी जो आज के टाइम में तो क्या मुट्ठा कौन खरीदता है, कोई बिजनेस वाला ही खरीदेगा, छोटा छोटा खरीदते रहते हैं। पहले जमाने में तो क्विंटल कट्ठे के कट्ठे ही वो खरीद लेते थे, उसको मुट्ठा कहते थे। मुट्ठा थोक नहीं है, जैसे शादी होती है, किनको रेजगारी किनको मुट्ठा देते। पहले जमाने में शादी होती थी ना, गरीब तो थोड़ा थोड़ा करके देगा, अमीर तो ढेर सारा कट्ठा ही दे देता था। कई तो शादी में क्या करते हैं, दिखा दिखा करके गिनती कर करके देंगे, ये दिया वो दिया। कई ऐसे भी होते थे जो कि ऐसा गुप्त दान करते थे। बाबा का हमेशा ये रहता था कि जो भी करो गुप्त होना चाहिए, नहीं तो कईयों को बहुत होता है, हम ये करते हैं, हमने इतना किया, हमने इतना किया। तो बाबा कहते जितना कहोगे उतना हाथ से गया, इसलिए गुप्त रीति करो। और गुप्त का ही फल होता है, गुप्त की ही प्राप्ति होती है और गुप्त की ही खुशी रहती है। तो बाबा कहते हैं कोई किनको रेजगारी देते, किनको मुट्ठा देते, कोई सब दिखा कर देते। ऐसे भी होते थे जो अमीर होंगे ना, वो क्या करेंगे, सारा दिखाएंगे, सारा दहेज खोल के रख देंगे, लोगों को बुलाते रहेंगे, आओ आओ देखो। अरे देख के क्या करेगा, उसको तो मिलना ही नहीं, देख के खुश होगा बस, उसकी महिमा करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं जो गरीब होता है वो बहुत साधारण रीति से सब कुछ करता। यहाँ भी हम देखते हैं बाबा के घर में साधारण माताएं आती, बच्चे आते, कणा कणा दाना करके इकट्ठा करके बहुत प्यार से करते हैं, और इतना गुप्त करते हैं और इतना प्यार से करते हैं, बाबा उनको इतनी दुआएं देते हैं। और कोई जो है कहिए हमने इतना दिया इतना दिया, तो बाबा कहते हैं इतना नहीं कहना होता है, बाबा को हम क्या दे सकते हैं। कई बार कई बच्चे आते थे बाबा के पास और बाबा को कहते थे बाबा मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन जब आपको जरूरत हो तो मेरे को बताना। बाबा कहते ना जरूरत है ना तुमको बताएंगे, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। इसलिए जिसको जो सफल करना है, समय कैसे जा रहा है वो तो आप देख रहे हैं, जितना सफल करेंगे उतना ही अपना भाग्य बनेगा। तो बाबा कहते हैं कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी देते हैं, किस्म किस्म के होते हैं, तुमको भी वर्षा मिलता है। कैसे मिलता बताओ है, तुमको भी वर्षा मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है, कितना मिलता है बताओ भाई बताओ, अरे बोलो ना इतना मिलता है। ऐसे करो बाबा को बताओ, दोनों हाथ खड़ा करो, हमको तो मुट्ठा मिलता है जितना चाहिए, पता ही नहीं बन, ढूंढते रहो ढूंढते रहो, इतना गिनती करते रहो, उसकी कोई भी गिनती नहीं है ना, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको वर्षा मिलता है मुट्ठा। पहले जमाने में सब्जी खरीदने जाते थे ना, सब्जी खरीदने के साथ साथ उसको कहते थे मुट्ठा दो, थोड़ा धनिया भी डाल दो, थोड़ा ये भी डाल दो, वो सब उसको भी मुट्ठा कहते थे, वो एक्स्ट्रा देते थे जिसकी कोई कीमत नहीं लगती थी। लेकिन ये जो बाबा मुट्ठा बता रहे हैं, ये बाबा बेहद का मुट्ठा। तो बाबा कहते हैं तुमको वर्षा मिलता मुट्ठा क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, बाप है ब्राइड ग्रूम, तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते। पता ही नहीं पड़ता विश्व की बादशाही मिल जाती है, एक सेकंड के अंदर विश्व की बादशाही मिल जाती है कि हमने कुछ किया ही नहीं, बाबा ने इतना सारा दे दिया। विश्व का मालिक तुम बनते हो, मुख्य बात है याद की, ज्ञान तो बहुत सहज है, भल है तो सिर्फ अल्प को याद करना, परंतु विचार किया जाता है याद ही झट खिसक जाती। ज्ञान तो सहज हो जाता है, याद में बुद्धि भटक जाती है ना, बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती। बाबा को हंसी आती थी, बाबा के पास बच्चे आते थे, बाबा के सामने बैठ के बाबा को कहते थे बाबा हम आपको भूल जाते। बाबा कहते देखो कितना भोला बच्चा बैठा है बाबा से, और योग लगा रहा, योग में भी कहता बाबा मैं भूल जाता, बाबा सामने बैठा बाबा को कहता भूल जाता हूँ, ये बाबा भी हंसते हैं, कहते अभी तक समझा ही नहीं कि बाबा से हमको क्या प्राप्ति होती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है ना, फादर है सुप्रीम सोल, तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित, अब बाप को याद करो। टीचर को बाप को और गुरु को याद किया जाता है, गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे मंत्र देंगे, बाबा का एक ही मंत्र है, कौन सा मंत्र है, मन मना भव, फिर क्या होगा मध्या जीव, मंत्र है मन मना भव और प्राप्ति है मध्या जीव भव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे, तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, राजा रानी और प्रजा होती। अब राजा रानी सब बन जाएंगे तो राजा रानी किस पर राज्य करेंगे, लेकिन बाबा कहते सबका लक्ष्य ये रहे कि हमको राजा रानी बनना है, फिर जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसी प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं तुम तो सब राजा रानी नहीं बनेंगे, राजा रानी तथा प्रजा होती है। तो मुख्य है त्रिमूर्ति, शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का अर्थात ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं, ये नई बात है ना, पहले ब्राह्मण रचा फिर इनको पढ़ाते हैं, फिर इनको पावन बनाते हैं, फिर इनको साथ में ले जाते हैं। तो बाबा कहते ये नई बात है ना, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया बहन भाई ठहरे, बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन। अब बूढ़े बूढ़े ज्ञान में चलते हैं, उनकी युगल भी ज्ञान में चलती है, तो क्या कहेंगे उस नशे से, कहते हम भाई बहन है। तो बाबा इसको करेक्ट करते हैं, बुद्धि से समझना है, बाहर वाले को नहीं बताना है कि हम भाई बहन है। इसी एक बात के कारण तो लोगों ने गलत भ्रांति फैला दी कि ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाते हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन है और शिव बाबा के बच्चे जो है वो आपस में भाई भाई हैं। बूढ़े कहेंगे हम भाई बहन है, ये अंदर में समझना है, बाहर वालों को नहीं बताना है, किसको फालतू ऐसे नहीं कहना है, किसी देखो बाबा कितना करेक्ट करे, ऐसे फालतू बात नहीं, वो समझेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ज्ञान नहीं है, किसको फालतू ऐसे नहीं कहना है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो बहन भाई हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, ये सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए, किस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है, कौन पढ़ाते, शिव बाबा त्रिमूर्ति शिव, पहले बाबा ने कहा शिव बाबा और आज बाबा त्रिमूर्ति शिव पक्का कर रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पार्ट, ब्रह्मा का केवल संगम युग के अंदर पार्ट है और शिव बाबा का तो पूरे कल्प में नहीं, आधे कल्प से पाठ शुरू होता है और विष्णु का तो पूरे कल्प में पाठ चलता है। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़े समय पाठ है, विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है, 8 गदियां चलती हैं, ब्रह्मा को तो एक ही जन्म का पाठ है। बाबा सब राजयुक्त बातें बताते हैं, विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे, त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर आता है ब्रह्मा का पाठ जो फिर तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं, ब्रह्मा से ब्राह्मण सूफी देवता बनते हैं, ये तो हो गया अलौकिक फादर। तो बाबा को होता था, निर्मल शांता दादी को एक नशा ही रहता था, मेरे 3 in 1 है, हम सबके 3 है अलग अलग, अपना लौकिक अलग और परलौकिक अलौकिक अलग और परलौकिक अलग। और निर्मल शांता देवी कहती थी मेरी थ्री इन वन है, लौकिक भी वही, अलौकिक भी वही और परलौकिक भी उसी में है। तो बाबा कहते हैं ये तो हो गया अलौकिक फादर, थोड़ा समय ये फादर है जिसको सब अब मानते हैं, आदि देव आदम और बीवी, इनके बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे। आदि देव और आदि देवी है ना, ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम का ही है। देवताओं का पाठ तो फिर बहुत चलता है, सत्यु में चलता है, त्रेता में चलता है, देवता और द्वापर में क्या चलता है, उनकी ही पूजा होती है। पहले वहां दोनों युग में चलता है, फिर द्वापर से उनकी पूजा होती है, लेकिन ब्राह्मणों का केवल संगम पर ही चलता है। देवताओं का पाठ तो फिर बहुत समय चलता है, देवता फिर सतयुग में ही कहेंगे, त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। ये बहुत गहरी गहरी पॉइंट्स मिलती हैं, सब तो एक समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं शिव को उड़ा दिया, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव परमात्मा को उन्होंने उसमें रखा ही नहीं है, शिव को उड़ा दिया है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल क्लेमिटीज भी आती हैं, विनाश तो होना ही है। कई बार बच्चे बाबा को कहते थे, बाबा अभी आप इतनी गहरी बातें बताते हो, पहले आपने क्यों नहीं बताया। तो बाबा क्या कहते थे, पहले तो तुम छोटे बच्चे थे, अगर पहले ही बाबा ये सारी गहरी बातें बता देते तो इतना लंबा टाइम यज्ञ चलता, इतनी बड़ी सेवा होती, इतना कार्य हो सकता। तो बाबा ने भी धीरे धीरे, जब तक बच्चों की बुद्धि विशाल हो तब तक बाबा ने भी धीरे धीरे सब बताया। तो बाबा कहते हैं ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल क्लेमिटीज भी आती है, विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, इतने सब शरीरों का विनाश होना ही है। अब पतित शरीर तो वहां जा नहीं सकते ना, तो बाबा कहते इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना, सिर्फ आंख खोलने से थोड़ी हो सकता है। बताते ना शंकर ने आंख खोली विनाश हो गया, बाबा कहते ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल कर्म ऐसे किए तो उसका रिजल्ट भी मिलता है। सिर्फ आंख खोलने से थोड़ी हो सकता है, जब स्वर्ग गुम हो जाता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती। अब सतयुग की दुनिया जब गायब होने वाली होती है, अर्थक्वेक होता है तो सबका सब धरती में समा जाता है। तो ये भी राजबाबा बता रहे, जब स्वर्ग गुम हो जाता है उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय के लिए शंकर आंख खोलेंगे क्या? सतयुग में तो शंकर नहीं है ना, वो तो नेचुरल एक ड्रामा बना हुआ है। क्या उस समय भी शंकर आंख खोलेंगे क्या? तो गाते है ना, द्वारका अथवा लंका पानी के नीचे चले। पहले तो गायन करते रहते थे, अभी तो रिसर्च करते हैं, द्वारकों की रिसर्च भी कर रहे हैं, जाते रहते पानी में के अंदर जा करके टुबकी लगा करके वो अनुभव भी करके आते रहते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ, परंतु ये नहीं समझते हैं कि अब कलयुग है। पतित हैं ये अभी तो समझने लग गए, पहले तो बिल्कुल ही नहीं समझते थे, परंतु ये नहीं समझते कि अब कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में क्या करना है, खुशी में नाचना चाहिए। बाबा भी कभी खुशियों में बहुत नाचते थे, तो दादी भी सबको खुशियों में बहुत डांस कराती थी। दादी भी कहती थी तुम बच्चों को खुशियों में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो उनको अंदर में ख्याल करते हैं ना कि हम पैसा कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो, स्वर्ग में तो तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो कि सोमनाथ का मंदिर क्या था। सोमनाथ का मंदिर इतना ऊंच, इतना महान, इतने हीरे जवाहरात थे जो उसको धीरे धीरे करके लूट के ले गए। अब सोमनाथ के मंदिर को 2-3 बार फिर से बनाया। अब सोमनाथ के मंदिर के पास अपना भी, बाबा का, शिव का भी कहेंगे स्थान है तो बहुत आते हैं। रियल शिव सोमरस पीने के लिए आते रहते ना, तो वहां भी बहुत सेवा होती रहती है। तो बाबा कहते हैं ध्यान करो सोमनाथ का मंदिर क्या था। एक मंदिर तो नहीं होगा ना, उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ, बनाने में भी टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी, फिर उसके बाद लूट कर लेगा। शुरू शुरू में नहीं लूटते, बाद में जब ये मुस्लिम आए, इनको मालूम पड़ा कि इतना धन संपत्ति है, फिर धीरे धीरे कितनी बार, 17 बार उसने अटैक किया इसको लूटने के लिए। तो बाबा कहते धीरे धीरे लूट रहा, ऐसा नहीं कि एक ही बार लूट के लेके चले गए। पूजा की होगी, उसके बाद फिर लूट कर ले गए, फौरन तो नहीं आए, बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मेहनत बिगैर काम नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं मेहनत करेंगे तब तो पद पाएंगे ना, मेहनत बिगैर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसी थोड़ी मिल जाती है। ये समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो जो मिलेंगे, बाबा के बच्चे बनेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो जो जीवन मुक्ति मिलेगी, बाकी जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, ऊंच पद तो नहीं मिलेगा ना। तो गायब ये समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत गहर गहर बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है। पहले तो समझते नहीं थे, शुरू में तो ही समझते थे आत्मा जो है अंगुष्ठ मिसल है, तो इस प्रकार से था। फिर धीरे धीरे बाबा ने ये स्पष्ट किया। फिर बच्चे कहते थे बाबा ये आप अभी क्यों बोल रहे हैं। बाबा के तो उस समय तुम्हारी बुद्धि इतनी रिफाइन नहीं थी, उस समय समझाते तो बुद्धि में नहीं बैठता था ना। तो बाबा कहती हैं दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों की रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहती हैं मैं तुमको बहुत गहरे गहरे बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं ये बताया। अब जिनको संशय आता ना, कई तो बहुत निश्चय बुद्धि होते हैं वो समझ आते, और कोई कच्चे होते ना संशय बुद्धि होंगे ना, क्योंकि बाबा ने पहले तो बताया नहीं, सभी बताया हम क्यों माने। अच्छा ज्ञानी छोड़ के भाग जाते। बाबा कहते बहुत अच्छा, जितना जाना जाओ, जितना गवाना है गवाओ। तो बाबा जो निश्चय बुद्धि होंगे वो हर बात की महीनता में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पहले भी तुमको ये सुनाए तो तुम, बाबा कहते ड्रामा में नहीं था। अब ड्रामा में जो सीन होगा जब टाइम आएगा तब आएगा ना, ड्रामा में है नहीं। पहले वाले बाद वाले सीन को तो आगे नहीं ला सकते ना। तो बाबा कहते तो ड्रामा में नहीं था, पहले ही तुमको सुनाए तो तुम समझ ना सको, ना समझ सको ना समझा सको। धीरे धीरे समझाते रहते हैं। ये है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देही अभिमानी बन जाते हैं, और सतयुग में सब होते हैं आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है तो सत्य में क्या स्थिति होती है, अपने को आत्मा समझते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है, बूढ़ा होने लगता है, तो हर एक के अंदर स्मृति रहती है कि अभी हम शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेंगे। अपने को आत्मा जानते हैं, हमारा शरीर अब बड़ा हुआ है, अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। कलयुग में भी यही है, पहले शरीर छोटा है फिर धीरे धीरे बढ़ता है। और आजकल तो कलयुग की दुनिया में कभी भी शरीर छूट जाता है, वहां तो टाइम पर छूटता है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की आयु कितनी और कोई की आयु कितनी, कोई की अकाल्य मृत्यु भी हो जाती। अभी पैदा ही हुआ है, एक साल हुआ चला जाता है, कोई पांच साल में चला गया, कोई दस साल में चला गया। तो बाबा कहते कोई की अकाल्य मृत्यु हो जाती है, कोई कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती। आजकल कलयुग की दुनिया में तो कम ही है, पहले जमाने में तो था ही ना। तो बाप को तो बाबा बता रहे हैं, तो बाप समझाते हैं तुमको क्या होना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्व विवाह किया ये कोई खुशी की बात नहीं है, बाबा ने इसका एक बहुत बड़ा राज खोला है। कई कई आते थे ना बाबा के सामने के, कईयों को तो बाबा ने, एक दो को बहुत मजबूरी थी बाबा ने करवाया। तो कई तो ऐसे जिनके दिमाग में बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं है, चलो गंधर्व विवाह कर लेते। बाबा कहते ये कोई बड़ी बात है, ये तो कमजोर ही करते, जो कमजोर ना वही सोचता है। कई कर भी लिया तो फिर उसमें फेल भी हो गए। गंधर्व विवाह किया ये कोई खुशी की बात नहीं है, कभी संकल्प नहीं आना चाहिए, और ही बंधन हो जाता है। निर्बंधन रहो, अपने आराम से रहो, बाबा की सेवा करो, ये तो कमजोरी है। गंधर्व विवाह करना ये कमजोरी है। बाबा ने एक दो का कराया वो तो मजबूत चले, अभी तक भी इतने पक्के मजबूत चले, लेकिन बाद के जो हुए एक दो केस वो सब के सब हर बात में फेल हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं ये तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहती हैं तो कोई मार थोड़ी सकता है, कोई भी नहीं मार सकता। ज्ञान कम है तो डरते हैं, छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करें तो उसको भी सजा मिल सकती है। आजकल तो स्कूलों में भी बहुत स्ट्रिक्ट नियम है कि टीचर्स बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, उनको मार नहीं सकते, मारते हैं। पहले जमाने में तो टीचर सजा देता था, अभी वो नहीं दे सकते, अगर देंगे भी तो उनको ही सजा मिल जाती है। तो बाबा बता रहे हैं छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करें तो उसको भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते, आजकल कोई जानवर को मारते उस पर भी हो जाता है केस, जानवर को भी कोई अगर मारते हैं तो उन पर भी केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को तो मार नहीं खानी है, कौन मारेगा, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते। बोलते रहेंगे माँ बाप, बोलते रहेंगे, लेकिन कुमार कमजोर होंगे ना, बार बार पूछ क्या करें क्या करें, खुद मन में अंदर कमजोरी है तो पूछते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कुमार को भी मार नहीं सकते, वह तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं, पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट बाबा के टाइम पर, अभी तो वो नहीं है, एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, उस समय 4-5 रुपया भी क्या होता था, 4 रुपया मीन्स 400 रुपये के बराबर है, और अभी का तो बराबर चाहिए ना, ज्यादा चाहिए। तो मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 405 रुपया खा लेता है। कहा गरीब साधारण वो तो थोड़े में ही चल जाते हैं, और अमीर जो है इतना लेगा और जाएगा होटल में अपनी इज्जत के लिए प्रेस्टीज के लिए जाएगा, 1000 की थाली लेगा, खाएगा इतना, बस कहेगा फलाने होटल में मैंने खाया, फलाने होटल में खाया। लेकिन चाहे बीमार भल कितना हो जाए, उसके ऊपर लाखों लग जाए, कोई बात नहीं है। तो ये उनकी इज्जत का सवाल रहता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपए, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया, पैसा बहुत है तो हबज हो जाते। हबज मीन्स लालच, ये करें, ये लाए वो लाए। तो बाबा कहते हैं गरीबों को पैसे नहीं है तो हबज भी नहीं है, उनको लालच भी नहीं रहती है, वे सूखी रोटी में खुश होते हैं, बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए। अब बाबा ने हंगामा शब्द बोल दिया, क्यों ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, उसके चक्कर में जाते हैं तो बुद्धि इधर जाती उधर जाती है, जो मिल रहा वो भी खाओ। बाबा तो हर तरह से या हर चीज से भरपूर करते हैं, कोई ऐसी चीज की कमी नहीं है जो बाबा ने और दादियों ने बच्चों को ना खिलाई हो। बाबा भी बच्चों को कहते थे, जब बाबा के पास बच्चे आते थे, बाबा कहते थे मेरे बच्चे बहुत दूर दूर से आए, आज इनको ये खाना खिलाना, आज इनको ये खिलाना, आज इनको खिलाना है। ऐसे बच्चियां होती हैं तो दादियां बहुत प्यार से सबके लिए वैरायटी खाना बनवाते हैं, और जब डबल विदेशी आते हैं उसमें दादी पूछती थी उनको क्या खाना है, कहते दादी गुलाब जामुन, तो दादी क्या करती उसी समय भोली दादी को बोलते थे, भोली दादी आज गुलाब जामुन बनेंगे, और भोली दादी कहती हाँ दादी जी दादी, उसी समय बना करके सबको खिलाते थे, कभी समोसा डिमांड करते थे और कभी आलू चिप्स उनको चाहिए ही चाहिए तो आलू चिप्स करते थे, तो उनके लिए अभी तक भी बनता ही रहता है। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए, खाने का भी शौक नहीं रखना चाहिए, बीमारी आदि तुम जानती हो, हम बच्चों को क्या नहीं मिलता है, सचमुच में क्या नहीं मिलेगा, बेहद की बादशाही और बेहद का सुख मिलता है, वहाँ कोई भी बीमारी आदि होती नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है, बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा होता, बुढ़ापे में और मौज ही करते हैं, वहाँ का बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है, प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे नहीं, अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, कई कहते हैं बाबा चलो कोई बात नहीं, हम पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, प्रजा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा कहते ऐसे नहीं, परंतु ऐसे नहीं, प्रजा तो प्रजा सही, फिर तो ऐसे होगा जैसे, अब बाबा ने एक टाइटल दे दिया, क्या टाइटल दिया बाबा ने, कोई कहता है कोई बात नहीं हम यहाँ प्रजा ही ठीक है, वहां भी प्रजा ठीक है, बाबा कहते फिर ऐसा हुआ जैसे कि यहाँ के भील, भील देखते हुए सुखी रहते हैं, बाहर सड़क पर बैठते हैं, एक आग जला दी, मोटा मोटा रोटा बनाया, मोटी मोटी सब्जी बनाई, खा लिया, खुशी में नाचते गाते हैं, तो बाबा कहते प्रजा सुखी होगी, पद भल का कम होगा, लेकिन वो तो वही कंडीशन हो गई ना, सबसे जैसे लोएस्ट पद हो गया, तो बाबा कहते हैं फिर तो ऐसे होगा जैसे यहाँ के भील सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है हम ब्रह्मा की नई रचना आपस में भाई बहन है, हम ब्रह्मा की नई रचना आपस में भाई बहन है, ये अंदर में समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं है कि हम भाई बहन है, वो तो अंदर में समझना है ना, सदा इसी खुशी में रहना है कि शिव बाबा हमें पढ़ाती हैं, दूसरा खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है, हबज अथवा लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निर्वृत्त होने वाले नष्टो महा समृद्धि स्वरूप भाव। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव, स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, कौन कौन सी है? स्व की प्रवृत्ति, दूसरा दैवी परिवार की प्रवृत्ति, तीसरा सेवा की प्रवृत्ति, चौथा हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्वीय रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः ही बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त करना अर्थात नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। सोगा कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। आज का व्यक्ति शहर टाइटल चल रहा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो नंबर वन परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास की स्मृति का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वह सब प्रकार के देह की स्मृति को खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। आज सुनेंगे आदरणीय दादी जी के विशेषता। दादी जी की विशेषताओं का जितना भी वर्णन करो उतना कम ही है। ये तो जैसे कि गागर में हम सागर को समा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं देखें आज है दादी जी की जो विशेषता थी, आज 20 तारीख है। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव। लास्ट दिनों में दादी जी आवाज की दुनिया से परे होती गई। उन्होंने एकाग्रता का बहुत गहरा अभ्यास किया। एक सेकंड में सब संकल्पों को स्टॉप कर देह और देह की दुनिया से उपराम होती जाती दादी जी कहती बाबा के स्वीट होम में जाकर बैठ जाओ तो ये जीवन बहुत न्यारी और प्यारी लगेगी। हम सभी राजऋषि ज्ञानी योगी तो आत्मा है, हमें इसका प्रैक्टिकल सबूत देना है। जो कुछ होता है उसे फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि अब बाबा के पास फरिश्तों की दुनिया में चलना है, फिर मूल वतन में जाना है। दादी जी इसी अभ्यास से कर्मातीत बन गई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को बता दें आज पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल और मिशन के श्रमिक कर्मचारी जो भी हैं उनको आज 11 बजे पांडव भवन में निमंत्रण दिया गया है। खास दादी जी के स्मृति दिवस के निमित्त उन्हें याद सौगात और ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया जाएगा। इसलिए आज दोपहर को जो मधुबन निवासी हैं, भट्टी में आई टीचर्स बहने हैं, उन सब का दोपहर का भोजन नीचे के डाइनिंग हॉल में रहेगा। और आज दोपहर को 11:30 बजे से भोजन आरंभ कर देंगे ताकि थोड़े थोड़े ग्रुप में आकर के बैठ के खाएं। और सभी को ध्यान रखना है, जल्दी से खा करके और जल्दी से उठ जाना है ताकि दूसरे ग्रुप को भी चांस मिले बैठने का। अच्छा, ये को फोटोग्राफी डिपार्टमेंट से सूचना है कि यहाँ पांडव हॉल में आप देखते हैं, हिस्ट्री हॉल में साकार बाबा के फोटोज हैं और प्रदर्शनी है बाबा की, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, स्लोगन आदि सब हैं। अगर किसी को चाहिए साकार बाबा के फोटोज, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, स्लोगन, लक्ष्मी नारायण आदि, ये अगर किसी को भी चाहिए तो फोटोग्राफी डिपार्टमेंट से उपलब्ध है। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट जहाँ दूर डिपार्टमेंट उसके नीचे है, और उसकी टाइमिंग से सुबह 8:30 से 12 बजे तक, 8:30 से 12 बजे के बीच में वहाँ पर जाकर के ले सकते हैं। कार्ड हैं, कई प्रकार के हैं, लिटरेचर के फोटो हैं, आर्ट और फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में सब मिलता है, जिसको चाहिए वहाँ जाकर ले सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। अच्छा, भट्टी वालों के लिए सब भाई बहनें मिलकर ताली बजाओ। देखो कितना सुंदर मौका है। वैसे तो जब भट्टी होती है पांडव वन में, वहाँ क्लास के भाई बहने आते हैं, और ये अहमदाबाद मणिनगर उससे संबंधित जो सेंटर्स के हैं वो सारे टीचर्स आए हैं। टीचर्स बहने हाथ खड़ा करो, ताली बजाओ जोर से। बाबा टीचर्स बहनों को देख के बहुत खुश होते थे। क्या टाइटल देते थे याद है? बाबा कहते थे हमारे गुरु भाई है। बाबा ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी, इतनी सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, प्यार से सेवा करते हैं। खास करके मधुबन वालों को देखो तो थोड़े दिन में देखो अहमदाबाद जाए, कहाँ जा रहे अहमदाबाद जा रहे, कहाँ जा रहे अहमदाबाद जा रहे, वहाँ भी सेवा करते हैं, हर प्रकार से सेवा करते हैं। अभी 3 दिन के लिए भट्टी के लिए आए हैं, और बाबा और आप सभी तो है ही हैं, इनकी सेवा में बहुत प्यार से, मधुबन वाले भी बहुत प्यार से सेवा करते हैं। वेलकम है, सब ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, सब खुश? अच्छा, चलो अभी बाबा की याद में बैठेंगे।